अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कुटि वैश्वृंद की, नामाचार्य ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्याम कुंड राधा कुंड की, राजगोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम खेतपुरी धाम की, नवदी मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, समवेद भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिके, मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं, यत्कृपा तम वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीशरं। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में माँ बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत। आज बहुत पवित्र तिथि है, जो कि लोकनाथ गोस्वामी, जो सड़क गोस्वामी वृंद से अन्यतम है, उनका तिरुभाव तिथि है और बोर्ड में भी लिखा हुआ है श्लोक है। तो थोड़ा श्लोक पाठ कर अनुवाद तात्पर्य पाठ करके फिर लोकनाथ महाराज का जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। चौतीस नंबर ना, श्रीमद् भागवतम स्कंद चार अध्याय इक्कीस श्लोक नंबर चौतीस। आशा भी अनेक गुण गुण धर, पृथक विभद्र गुण क्रियाति, संपद्य अर्थसया लिंग नाम भी, विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपतः, आशा भी अनेक गुण गुण धर, पृथक भी द्रव्य गुण क्रियाक्ति भी, संपद्यते अर्थ सलिंग नाम भी, विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपत, असाव्यनेक गुण गुण धर, पृथक विविध प्रगुण क्रियाक्ति भी, संपद्यते अर्था सलिंग नाम भी, विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपत। बोलिए, पृथक विध द्रव गुण क्रियाक्ति भी, संपद्यते अर्थ सलिंग नाम भी, विज्ञान घन स्वरूपत। माताएं असाव्यनेक गुण गुण धरा, पृथग् विधा द्रव गुण गुण क्रियात्मिभि सम्पद्यते अर्थ सलिंग नाम भी बुद्ध विज्ञान घन स्वरूप शब्दार्थ असौ श्री भगवान यह इसी संसार अनेक विभिन्न गुण गुण अगुण दिव्य अधर यज्ञ पृथक विध किस्म द्रव्य भौतिक तत्व गुण अवयव क्रिया कार्य उक्ति भी विभिन्न मंत्र के उच्चारण से संपद्यते पूजा जाता है। अर्थ हित आशय प्रयोजन लिंग रूप नाम भी नाम से विशोध कलमस रहित विज्ञान विज्ञान घन घनीभूत स्वरूप आता अपनी निज स्वरूप में अनुवाद श्री भगवान दिव्य है वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है जिसका कोई भौतिक भेद नहीं है किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ के हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्व अनुष्ठान तथा मंत्र द्वारा जगकर्ता के मनोरथ एवं उद्देश्य के अनुसार विभिन्न नाम से देवताओं को समर्पित होने वाले जगों को स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री भगवान दिव्य है वे इस जगत की द्वारा कलुषित नहीं होते यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है जिसका कोई भौतिक भेद नहीं है किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्व अनुष्ठान तथा मंत्र द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथ को एवं उद्देश्य के अनुसार विविध नाम से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों का शिकार करते हैं। तात्पर्य वेद में भौतिक स्वतंत्रता के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संस्कृति प्राप्त है जैसे भगवत गीता में उसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा ने मनुष्य तथा देवताओं समेत समस्त जीवात्माओं को उत्पन्न किया है और उन्हें अपने अपने आकांक्षाओं के अनुसार यज्ञ करने का उद्देश्य दिया है। यज्ञ नाम पढ़ने के कारण यह है कि भगवान विष्णु के पोष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। यज्ञ करने के कारण भौतिक लाभ की प्राप्ति है किंतु साथ ही उनका लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना भी हो रहता है। अतः वेद में ऐसे यज्ञ की संस्कृति की गई है ऐसी कार्य कर्मकांड कहलाती है और कर्मकांड तीन प्रकार की गुण से कलुषित होती है। सामान्यतः कर्मकांड की अनुष्ठान रजगुण के किए जाती है किंतु मनुष्य तथा देवता दोनों का ही यज्ञ करने होती है क्योंकि उनके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीका में ये कर्मकांड अनुष्ठान भले ही कलुषित हो किंतु उसमें कुछ ना कुछ भक्ति रहती है क्योंकि जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है भगवान विष्णु को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जत किंचित प्रयास भी भक्ति है और अत्यंत मूल्यवान है। रंच मात्र भी भक्ति अनुष्ठान को भौतिक प्रकृति के शुद्ध बनाती है और भक्ति से अनुष्ठान धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। अतः यद्यपि ऐसे यज्ञ ऊपर ऊपर कर्मकांड कहलाते हैं किंतु उनके फल दिव्य होते हैं। कुछ यज्ञ तथा सूर्य यज्ञ इंद्र यज्ञ तथा चंद्र यज्ञ देवताओं के नाम पर संपन्न किए जाते हैं किंतु ये देवता भगवान के शारीरिक अंग होते हैं। ये देवता कोई भी आहुति या भेंट अपनी निमित्त स्वीकार नहीं कर सकते किंतु वे भगवान के लिए स्वीकार कर सकते हैं। यह वैसा ही जैसे कि सरकारी कर वसूलने वाला अपने लिए कर संग्रह न करके सरकार के लिए करता है। किसी भी यज्ञ जो इस प्रकार के पुण्य तथा बोध के साथ किया जाता है
भगवत गीता में ब्रह्मा प्राण भगवान को अर्पित यज्ञ कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई यज्ञ की फल नहीं भोग सकता है। इसलिए भगवान का कहना है कि समस्त यज्ञों के वास्तविक भुक्ता भुक्तारंग जगत तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, इस पुष्टि से यज्ञ संपन्न होनी चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा अग्नि ब्रह्मागो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो हो कृष्ण भावना में पूर्ण मग्न है, इस पुरुष के लिए भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। वह उन ब्रह्मस्वरूप क्रियाओं का प्राण रहता है जिसमें ब्रह्मा ब्रह्मा के धाम जाता है। भगवान के चरण कमलों को काम दुगांग्री पंकजम कहा जा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा के पूरा करने में समर्थ है। इस भक्त अपनी ही जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकता है, किंतु अंत में शरीर त्यागता वो बिना किसी संदेह भगवान का धाम जाता है। अम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूप कदा मज्जं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सगणं रघुनाथं नितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखानितांच। नमं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने घोरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। वंचा कल्प तरु वत्स कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापद्याराय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेसरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दय पुष्पवंतौ चित्रसंदौतमानुजौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक का जो तात्पर्य है, और भी एक पन्ना है तो थोड़ा बहुत मैं उसका अध्ययन किया। इसमें प्रभुपाद ने जो उल्लेख किए हैं कि सभी का भुक्ता बाद यज्ञ करने का उद्देश्य जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। जो कर्मकांड का हिसाब में जो यज्ञ का विधान है, ये इंद्रिय तृप्ति बा स्वर्गलोक जाना है, लेकिन भगवत गीता ये पुष्टि करता है कि आप जो स्वर्ग लोक आप पधार गए बा वहाँ बहुत सारे थाट बाट में आप उसको भोग का सामग्री मिल गया, लेकिन ये क्षणिक है, कुछ दिन का बाद आपको ये जग का जो हो फल आपका समाप्त तो हो जाता है, यहाँ आ जाते हैं। जैसे आप सुने हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड सकली विषय भांड अमृत बलिया जबा खाए नाना जुनी सदा फिरे कदर जब भक्कण करे से जीव अधपते जाए। एक कर्मकांड का विधान है कि ये विष का भांड जैसे, विष खाने से क्या होगा, राम नाम सत्य होगा, लेकिन भगवान शंकर विष को पचा लिए हजम कर लीजिए, हमको उनका अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। लेकिन और भी प्रभुपाद ने उल्लेख किए हैं कर्म कांड में जो यज्ञ किया जाता है उसमें भी कुछ दिव्य गुण होता है। आप लोग सुने होंगे कि कर्म कांड में जब यज्ञ का आयोजन किया जाता है वहाँ पंच उपासना रहता है, उसमें भगवान विष्णु को भी पूजा किया जाता है, तो उसमें ये भक्ति का और अनुष्ठान वहाँ पर है कर्मकांड में। लेकिन एक कलयुग के लिए भगवान का नाम का कीर्तन, कौन से नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसको वो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पुष्टि करते हैं, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संग पांग स पार्षदम जगे संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेदस। जो अकृष्ण वर्ण भगवान का जो स्वरूपत, अकृष्ण मतलब गोरा से काला, मतलब एक गोरे है तो भगवान और उनका जो अपोजिट रंग किया है वह कलर भगवान कृष्ण काला रंग है, इसलिए यहाँ पर अकृष्ण बनना है। इसको कौन व्यक्ति भजन करेगा ना, जजंती ही सुमेदस। ये यज्ञ का भोक्ता जो यज्ञ का मालिक और भगवान का वो एक नाम भी यज्ञ है, नाम संकीर्तन जसम सर्म पाप प्रणसन। ये भागवतम का अंतिम श्लोक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश करके व्यासासन से उठ के चल दिए, अपना भजन में लीन हो गए। अरे कलियुग में ये तो पांच चीज मना है, आप लोग सुने होंगे, अश्वमेधम गवालंबम संन्यास पड़पैतृकम देवरण सुतात्पति कड़ुपंच विवर्जित। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास एवं पितृश्राद्ध में मांस देना एवं देवर से संतान उत्पत्ति करना, लेकिन भक्ति जीवन में व प्रचार के लिए हमारे जो चार संप्रदाय इसमें त्रिदंडी संन्यास ग्रहण करते हैं। और जो कर्मकांड का जो मैं बता रहा था, एक कर्मकांड चक्कर में ये सारा जगत पड़े हुए, ऐसे नहीं हम भक्ति जीवन के लिए भी आए हैं लेकिन कर्मकांड से हम भी दूर नहीं है। लेकिन इसे सावधान रहना चाहिए कि ये विष का भांड हम ना भक्षण करें। लेकिन आज बहुत पवित्र तिथि है, इसमें लोकनाथ महाराज का जो कि सड़क गुस्सा में से अन्यतम है एवं ये वृंदावन धाम में अब प्रथम तपता है कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवर्त भारतम अभूतान मधर्म असम तदात्मन सृजाम। अधर्म का जब प्रबल व वृद्धि होता है भगवान अवतार लेते हैं, हर युग में कड़ा अवतार अंश हिसाब से, लेकिन कड़ी जो पावन अवतारी श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे बद्धजीव को उद्धार करने के लिए चार भाव का भक्ति देकर व हरिनाम हरिनाम अमृत प्रेम बन्या को जो प्रचार कर रहे थे, जिन लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि दक्षिण भारत से कुमारिका तक, हिमालय से दक्षिण भारत तक ये प्रेम बन्या हमें सभी को प्लावित कर दिया। उन्हें कभी भी बात से विचार किए नहीं कि कोई योग्य है अयोग्य है, कोई ही सूची अचूची को विचार किए नहीं। आज से लगभग 500 साल पहले का बात है, उसी समय में जसोर जिला पूर्व बंग का उत्तर बंग में जसोर जिला में तालखड़ी नाम का जो ग्राम है वहां पर ब्राह्मण परिवार में पद्मनाभ एवं माता सीता देवी का गर्भ को आश्रय करके ये लोकनाथ गुस्सा में आविर्भूत हुए थे। खास करके बांग्लादेश में बांग्ल प्रदेश में हमारे जो आचार्य लोग प्राय आधे से ज्यादा उनका आविर्भाव स्थली है। जिन लोग को सुजोग नहीं मिला है तो उन लोग को दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम जो एकादशी में भजन गाते हैं व सुनते हैं, गौर अमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरिवामी प्रणय भक्ति संगे, क्योंकि वह शास्त्र और भी प्रणाम प्रमाण करता है वैष्णव भैर क्रियालेस हित तो जाहरे सही तो ईश्वर तत्व तो बुझी पारे पारे। यदि लोकनाथ गोस्वामी जैसे परम वैष्णव का कृपा हम लाभ कर सकते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने उनका कृपा बाप तब बने, इसके लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए और कृपा का जाचना करना चाहिए, तब ये भगवत तत्व का और भगवान को हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने ये जसोर जिला बा तालखड़ी ग्राम छोड़कर अपना सपरिवार बसवास कहां पर किए थे, ना नवद्वीप में। उसी समय भारत में बहुत प्रसिद्ध था कि विद्यानगर नाम से, अभी जो विद्यानगर है वो अलग है, लेकिन नवद्वीप को उस समय विद्यानगर भी कहा जाता था। और वहां पर आके जितना भी भारतवर्ष का विद्वान लोग पढ़ाई किया करते थे और सभी लोग सरस्वती का वर प्रसाद से कोई किससे कम नहीं थे, लेकिन ये भक्ति भाव जो प्रचार करने का व भक्ति का वहां पर लेस मात्र नहीं था। तो लोकनाथ गोस्वामी या अध्ययन करने से बहाना से चैतन्य महाराज का अंग संग लाभ करने के लिए वहा भक्ति प्रचार कार्य में सहायता करने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि ये भगवत इच्छा है। जैसे भगवान ये धराधाम में आते हैं तो अपना सपरिकर को लेके आते हैं, तो लोकनाथ महाराज व लोकनाथ गोस्वामी संभ्रांत परिवार में भी जन्म ग्रहण किए थे एवं साथ साथ उनका पिताजी थे ये अत्यंत आचार्य का टोली में भी पढ़ाई करते थे, उनका साथ घनिष्ठ मित्र भी थे। उसका साथ साथ अद्वैत आचार्य का टोली में पढ़ाई करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब वो अध्ययन करते थे उस समय आप सुने हैं कि चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाय पंडित का नाम से नामित थे, और पंडित को देखने से और जो छोटे मोटे पंडित थे उन लोग देख के रास्ता काट के चले जाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसको छोड़ते थे नहीं, क्यों कि उन्होंने जो अपप्रचार करते थे इसको रुकने के लिए ऐसे कि गदाधर मुकुंद आदि वो देखते ही उनसे भाग जाते थे। जब लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु प्रभु को जब पहले दर्शन किए उसी समय ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिए थे चैतन्य महाप्रभु का पाद पद्म में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था क्या ना ये भक्ति भाव को वह वृंदावन का जो लुप्त तीर्थ को कौन उद्धार करेगा, स्वयं उद्धार कर सकते हैं लेकिन भक्त को जस प्रदान करने के लिए, जैसे अर्जुन को भगवान बतलाए तुम देखो हो युद्ध नहीं भी करोगे इसको मैं मार के रखा हूं, मात्र तुमको जस प्रदान करने के मेरा व्यवस्था है। तो लोकनाथ गोस्वामी को उन्होंने आत्मसात किए, लेकिन उनका इच्छा किया था ना चैतन्य महाप्रभु धराधाम में जितना दिन प्रकट रहेंगे व उपस्थित रहेंगे तो उनका साथ रहकर नाम रस का आस्वादन करेंगे एवं भक्ति का प्रचार करेंगे। लेकिन ऐसे एक दिन आया चैतन्य महाप्रभु सीधे बात कर दिए, तुमको हो वृंदावन जाना है। लोकनाथ गोस्वामी का सिर में वज्रपात जैसे हुआ, लेकिन अनुनय विनय किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु माने नहीं। अंतिम में फिर वृंदावन आने के लिए फिर राजी हो गए लोकनाथ गोस्वामी। अब उनका जो परम मित्र थे भोगौरव गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बोले कि मैं लोकनाथ गोस्वामी के साथ जा सकता हूँ एवं उनको सहायता कर सकता हूँ। उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर दिए, क्योंकि ये लोकनाथ गोस्वामी एवं भोगौरव गोस्वामी ये भगवान का जो है नित्य लीला में वह सखी भावा मंजरी थे उन्होंने। ये मंजरी होने के नाते ये ब्रज का सभी प्रकार के तीर्थ व लीला स्थान को उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका माध्यम से ये करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर आए जब बहुत जगह में रहकर भजन साधन किए, लेकिन मुख्यतः अब जो खैर बल के जो ग्राम है जहाँ की बक्कासुर को बद्ध किए थे वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी का मंदिर है, वहाँ भी भजन किए थे। जब हम नंदगांव बरसाना जाते हैं वो एक टर्न आता है उसी जगह में वो खैर लिखा रहता है, खैरा खदीर बन है उसका, उसी जगह में लोकनाथ गोस्वामी बहुत दिन भजन किए। और एक समय क्या हुआ ना, उनका विग्रह सेवा करने के लिए भी मन में आरो प्रेम भाव प्रकट हुआ, तो भगवान अंतर्जामी है। अब भगवान का इच्छा क्या है ना, भक्त का साथ ये प्रेम आदान प्रदान करने का। राधा विनोद ने ये उमराव गांव का किशोरी कुंड में ऐसी विग्रह था, तो अपना स्वरूप को भक्त का सामने ना कि वृद्ध वेश धारण करके ये राधा विनोद को लेके दे दिए, बतलाए कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, आप इसको सेवा कीजिए, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये आश्चर्यचकित हो गए लोग याद गुस्सा में, लेकिन कुछ देर के बाद देखे कि ऐसे वृद्ध भक्त कोई है ही नहीं वहां पर। लोकनाथ गोस्वामी समझ गए कि यह भगवान का इच्छा है। तो राधा विनोद का सेवा बहुत थाटपाट से नहीं किया करते थे, उसे प्रेम से किया करते थे। भक्तमाल में वर्णन है कि सबरी कोई पंचरात्रि विधि का उन्होंने आप फॉलो नहीं करते, अनुसरण नहीं करते थे, उसको कोई विधा विधान पंचरात्र का विधि का कोई उनको वो और थर्ड बार से किया करने का कोई सुविधा ही नहीं था। मुख्य तो किया था उनका अंदर भाव, यदि हम थर्ड बार से पंचरात्रि बा जो चार संप्रदाय में जो अनुमोदन है भगवान विग्रह का सेवा का षोडश उपचार में पूजा करने का, यदि हमारे भाव उदय नहीं हुआ उसका निष्फल है। क्योंकि आप सुने हैं कि तृतीय स्कंद में कपड़े देव ने माता को उद्देश्य करके बताते हैं कि कई यदि पुजारी षोडश उपचार में भगवान को पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, भक्त का साथ यदि उनका समय व्यवहार नहीं है, उनका देश करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसका पूजा छप ये जो षोडश उपचार का पूजा कैसे है ना, राख में घी डालने का बराबर है। ऐसे ही तो शास्त्र का अनुसार जो पुजारी होते हैं उसे कनिष्ठतर में माना जाता है, लेकिन हमारे गोस्वामी वर्ग उसका पुष्टि किया है। हम वो सोचें कि हाँ लोकनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोग भी विग्रह का सेवा किए, शास्त्र का जो वर्णन अनुसार उन्होंने किए और सिद्धांत भी स्थापित किए, लेकिन वो उन लोग बहुत उच्च कोटि का भक्त थे। लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये पंचरात्रि की विधि विधान का साथ साथ हमारा जो भाव है उसको भी प्रकट करना चाहिए। ये भाव कैसे प्रकट होगा है ना, नवदा भक्ति काल आप सुनेंगे उसका जो दूसरा पन्ना में उसका उल्लेख है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति को हम यदि आश्रय ग्रहण करेंगे, ये लोकनाथ गोस्वामी ब्रज में ये लुप्त तीर्थ उधार करने का कार्य चैतन्य महापुर संपन्न कर दिए थे, तो उसका उधार करना एवं हर लीला स्थली का एवं हर तीर्थ का ये बहुत मुश्किल से बाहर कष्ट से। आजकल जैसे गेस्ट हाउस बा धर्मशाला मंदिर है, उस समय कोई मंदिर बा धर्मशाला नहीं था, बहुत कष्ट से निघंत जंगल था, शास्त्र में वर्णन है बा भक्त माल में वर्णन है। ऐसे कि हिंसा जानवर सब रहा करते थे यहाँ पर। एक मेरा को भी याद है कि जो हम 96 में आए हैं 1996 में, जो परिक्रमा रास्ते में सुबह परिक्रमा का जाने के लिए भी बहुत डर लगता था, तो आज से 500 साल पहले कैसे घना जंगल होगा अंदाज लगा लीजिए। ऐसे हम सुने हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोटरे लोग भी रहा करते थे, क्योंकि बद्रनाभ जो वो लुप्त तीर्थ को उन्होंने भी उधार किए, उस समय वहां कोई ब्रजवासी नहीं रहा करते थे, तो उन्होंने राजस्थान से कुछ से लोटरे लोग यहाँ बस बात कर दिए थे। लेकिन आज भी कुछ ब्रजवासी है, उनका स्वभाव ऐसे है, लेकिन ब्रजवासी बा धामवासी से सावधान से बरतना चाहिए। प्रदानंद सरस्वती ठाकुर वृंदावन महिमा मृत में लिखते हैं जो स्थावर स्थावर एवं जंगम ये दो प्रकार जो प्राणी है, जो चलने फिरने वाले और जो पेड़ पौधे हैं, ये भी उनका भी जीवन है, इनको समभाव देखते हैं और मित्र व स्नेह करते हैं, ओ ब्रज में रहने का लायक है। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ऐसे ही सबका साथ वार्तालाप व स्नेह श्रद्धा का साथ मिला करते थे, एवं श्रवण कीर्तन एवं भक्ति ग्रंथ का भी उन्होंने प्रणय किया करते थे। एक बार उनको इच्छा हुआ कि बहुत आठ बार से थोड़ा सेवा कर सकते हैं राधा विनोद का, लेकिन पास में तो है ही नहीं, लेकिन जो भी साग पत्ता फल मूल मिलता था उससे ही उन्होंने भगवान को तृप्ति पर संतुष्ट किया करते थे। एक बार उन्होंने भगवान के रसोई बनाने के लिए उनका मन हुआ भाई इच्छा हुआ, उनका सेवक भी था पास में, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने ध्यान में बैठ गए। अभी उनका जो सेवक थे उन्होंने समय जा रहा है, अभी रसोई कब होगा, भगवान को कब भोग लगाएंगे, कब आरती करेंगे, भगवान को फिर विश्राम कराना है, रीति रिवाज को भी उन्होंने और जन समाज को शिक्षा देना था। लेकिन दो तीन बार तीन चार बार पांच बार आए, देखे कि लोकनाथ गोस्वामी वहां बैठे रहकर ध्यान कर रहा है, अभी कब रसोई होगा भगवान के लिए, कब भोग बनेगा। लेकिन भगवान राधा विनोद ने समझिए कि अपना जो भक्त का सेवक परेशान हो रहा है, तो उन्होंने क्या कि अपना वेद लोकनाथ गोस्वामी का जैसे बदल दिए। जाओ दोबारा उनका सेवक आया, देखे कि यहाँ भी बाबा बैठे के ध्यान कर रहा है और उधार भी है, वो परेशान हो गया, बोला कोई दूसरा तो कोई डुप्लीकेट अच्छा तो मैं लेके नहीं आया। लेकिन बाद में देखे कुछ की देर का बाद कि वो दूसरा जो लोकनाथ को समझे थे ही नहीं वहां पर, तो समझ गए कि ये राधा विनोद का ही लीला है। ऐसे कि ब्रजवासी लोग उनको बतलाए कि अच्छा बाबा आप कोई घर मकान क्या कुटिया भी बना के नहीं रहते हो, तो लोकनाथ दास गोस्वामी बताए कि देखो मेरा को कोई कुटिया जरूर नहीं, घर मकान कोई जरूर नहीं, क्योंकि मैं जैसे चलता फिरता हूँ मेरे ठाकुर भी ऐसे चलते फिरते रहेंगे। उनका ये जो मंदिर बस सिंहासन व्यासासन कोई बनाए नहीं थे, उनका मंदिर किया था ना ये है यार। आजकल जैसे हम लोग जब बैग बहुत सुंदर भाव से बा भगवान का विचित्र विचित्र से हरे कृष्ण महामंत्र लेके और बैग में झोलाने बा कंठ में झोलाने के लिए भी अभी व्यवस्था किए हैं भक्त लोग, उस समय से ऐसे नहीं था। अब था क्या, अब देखे होंगे एक गुमुखी जैसे होता है, गाय का मुख जैसे, कुछ भक्त लोग वृंदावन में है उसको वो जप करते हैं भगवान नाम, तो ऐसे ही है इसमें तो जप किया करते थे। एक झोली था उनका पास, झोली में ही राधा विनोद को डाल के गुहा करते थे, क्योंकि मैं भ्रमण करने वाला था मेरा ठाकुर भी भ्रमण करेंगे, तो भक्त का भाव कैसे होना चाहिए। अभी भी उसी परंपरा अनुसार कोई भक्त हमारे कोई सालग्राम लेके घूमते हैं और कोई गिराज लेके रहते हैं, क्योंकि भगवान अपना भक्त का जब भाव से ही संतुष्ट होते। हम नवधा भक्ति को आचरण किए व उसका अंग को पान किए एवं 64 प्रकार सेवा अपराध, 10 नाम अपराध, 10 धाम अपराध को भी पालन किए कि सत्य युग का जो अष्टांग युग की भी आ रहा परीक्षा ले लिए बा अपनाया, लेकिन हमारा यदि भाव नहीं है तो क्या हुआ। देवोती को जो बतलाए कि राख में घी डालने का बराबर, लेकिन इसमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ है। जैसे प्रदानंद महाराज बतला रहे थे कि अनर्थ आसक्ति एवं निष्ठा तक उन्होंने पहुंचाए, अभी आगे आपको उसे सुनेंगे, तो उसका प्रति भी आप सावधान होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश से लगभग 300 से ज्यादा तीर्थ एवं लीला स्थल का उन्होंने विकास किए। उसका बाद सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी आए। ऐसे मान्यता है कि लगभग चैतन्य महाप्रभु का से उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी 2 से 4 साल का बड़े थे, इसे 2 बात लिखे हुए उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु आने का मुख्य कारण क्या था ना, ये 4 प्रकार का जो 4 प्रकार जो भक्त का जो भाव है, दास्य सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य रस का, उसको प्रणय करने का था। ये लोकनाथ दास गोस्वामी ये लुप्त तीर्थ को भी उद्धार किए एवं ये भाव को भी उन्होंने पुष्टि किए। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करते हुए पर उनका इच्छा किया हुआ ना, उसको भी दर्शन करना है, उससे मिलना है, तो भेज दिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से यहां। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु का साथ उन्हें मिले नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु उस समय थे कहां, यहां से पर दक्षिण भारत चल दिए थे। जब दक्षिण भारत चलते पैदल चलते हुए वहां गए तो चैतन्य महाप्रभु वहां भी मिले नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से कहां आए, प्रयाग आ गए। लेकिन लोकनाथ गुस्सा में निराश नहीं हुए, इतना परेशान होने के बाद भी तो चैतन्य महाप्रभु उनको पे दर्शन दिए। तो भक्त को ऐसे ही आकांक्षा का उत्कंठा होना चाहिए। अब भक्ति रसामृत सिंधु में जो हो 19 अध्याय में उसका वर्णन है, उसका लक्षण क्या है ना, नाम गान में समस्या रुचि रखता है, भगवान का लीला स्थली में बसने का आकांक्षा होता है। तो प्रभुपाद की कृपा से हम लोग लीला स्थली का लीला स्थली भगवान का जो दिव्य लीला स्थली में हम तो बसवास किए हैं, जो कि 64 अंग में भक्ति का जो 5 अंग है, जो 5 अंग में जो मुख्य अंग है उसमें है धामवास। लेकिन धामवास सहित हम लोग को धामवासी का कृपा लेने के लिए उनको मित्र बात व्यवहार करना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे जगन्नाथ दास बाबा जी एवं गौर किशन दास बाबा जी ने, कोई एक गोस्वामी थे कि कुत्ते का साथ भी उन्होंने प्रसाद खाया करते थे, सब लोग बोलते थे अरे बाबा पागल हो गया, ये नहीं देखते थे कुत्ते है कि बा कोई छोड़ जाती है, क्योंकि कृष्णदास कविराज बोले कि सूची है मुची है यदि कृष्ण भजे, और सूची है मुची है यदि कृष्ण तेजे। पवित्र परिवार में बा पवित्र कुल में उच्च वर्ण में हो जैसे जन्म ग्रहण किया है, भगवान का यदि भजन नहीं कर रहा है तब फायदा क्या है उसका, उच्च वर्ण में उच्च समाज में उच्च शिक्षित परिवार में जन्म ग्रहण करना है। यदि मुची है ये जो चमड़ा का जो जोता सिलाई करने वाला यदि भगवान को भजन करे तो वह उनसे श्रेष्ठ है। लेकिन ब्रज में आने का बाद हम लोग का दर्शन अलग हो जाता है, हम क्या करते हैं दूसरी दृष्टि करते हैं। इसलिए इसका प्रति सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये धाम में जन्म ग्रहण करना इतना आसानी नहीं है, क्योंकि ये धाम में भगवान हमेशा अपना लीला को पुष्टि करते रहते हैं। अद्यपि से लीला करे गौर राय कौनो कौनो भाग्यवान देखी पारे पार। और भगवान अपना श्रीमुख से बतलाए कि वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। एक प्रकट लीला है, एक अप्रकट लीला है। अभी भगवान इस जगत में बा भूम वृंदावन में अप्रकट रूप में है, उसका उदाहरण प्रभुपाद दिया करते हैं क्या, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर दूसरा दिन फिर टाइम में ही 5:30-6 बजे तक उन्होंने उदय होते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी है जैसे पेपर में लिखा हुआ है प्रभुपाद, प्रभुपाद भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान का धाम भी दिव्य है, कई भौतिक कर्मच उसको नष्ट नहीं करता पर ढांक नहीं सकता है, लेकिन ये दिव्य अनुभूति और दिव्य दर्शन के लिए हम लोग को दिव्य दृष्टि भी चाहिए। हम गुरु पूजा में गाते हैं क्या, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये दिव्य ज्ञान हृदय कैसे प्रकाशित होगा ना, हम भगवान से जैसे प्रेम करते हैं गुरु जी से भी ऐसे प्रेम करेंगे तो होगा। आ गुरु को जब आए, गुरु जी आए तो आगे पीछे हो गए, थोड़ा माला डाल दिए, अमर अपना सामर्थ्य अनुसार उनको भोजन कराए के बाद दान दक्षिणा दिए, लेकिन हम भगवान से ऐसे प्रेम नहीं है। ये दिव्य अनुभूति के लिए, दिव्य दृष्टि के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए हमको दोनों आप भाव बराबर होना चाहिए। हमारे आचार्य लोग ऐसे ही उसका और भाव को प्रकट किया, हम लोग को सिखाने के लिए किया। इसीलिए धाम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध से बचने की कोशिश करना चाहिए, और वैष्णव अपराध से। गोपाल चंपू में जी गोस्वामी लिखते हैं कि गौतम तंत्र से उद्धृत करते हैं कि ये भौम वृंदावन में जो भी कीट पतंग शरीर छोड़ते हैं उनको भगवत धाम मान लेके जाएंगे, तो भगवान कितना बड़ा गारंटी स्वीकार करके रखे। लेकिन हम धाम में आने का बाद यदि दूसरा जाके लिए हम चिंता करते हैं, भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि धाम में रहते हुए जैसे कि दूसरा जगह के लिए चिंता करता है वो पाखंड है, पामर है, नरहरी सरकार बताते। इसमें एक प्रश्न उठता थे कि हमारे जो संस्था है विदेश में साथ जुड़े हुआ है तो हमारे क्या गति होगा, यहाँ प्रचार का उद्देश्य जा रहे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए बार इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहे तो वो पाखंड बा पामर नाम हमारे लिए ठीक है। इसीलिए ये धाम बात सही से साथ साथ भक्त का साथ व्यवहार एवं श्रवण किससे ना, जो कि ब्रज अनुगत में है, भक्ति रसामृत सिंधु में उसका वर्णन है, और उसका प्रदर्शन कौन किए, नरोत्तम दास भी किए, वो भी सम्भ्रांत परिवार बा राजा का पुत्र रूप में आप सब जानते थे ब्रज में, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने ये व्रत रखे थे कि प्रतिज्ञा करके रखे थे कि मैं किसको शिष्य रूप में ग्रह स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर भी जी पकड़ के रखे उनका भी प्रतिज्ञा किया था ना, वो भी शिष्य उनसे दीक्षित होंगे, बस शिष्य उनका ही शिष्य होंगे। अभी भी हमारे जो संस्था में उसका रूल है नियम है, जो भक्त लोग नया भक्त में ज्वाइन करते हैं उनको बाथरूम का सफाई कराना पड़ता है, और उसमें ट्रेनिंग समय में देखा जाता है बहुत सारे पढ़े लिखे भक्त आते हैं, उच्च परिवार से उच्च वंश से आते हैं, उस समय उन लोग का टिकट हो जाता है, जो बाथरूम सफाई हो जाता है ना उस समय उनको हार मान के चले जाते। एक हमारे अनुभूति है, हम जो 22 भक्त थे, एक अभी भी वो भक्त है, उनका नाम बरहार रूपदास, बहुत पढ़े लिखे लड़का है, जिस दिन बाथरूम का सफाई का टाइम होता उसको बोलता मेरे को बुखार आ रहा है, तो हमारे मुरारी गुप्त प्रभु अभी मायापुर में है, उन्होंने बोलते हैं चलो एक जीव आया है भक्ति करने के लिए, आज उसको हम छुट्टी कर देते हैं, उसी ही बहाना से अभी भी वो भक्त है। अब कभी देख सकते हैं भक्तचार्य महाराज से वो दीक्षा लिए हैं, बरा रूप उनका नाम बरा देव। तलो लोकनाथ गोस्वामी जो शौच क्रिया करते थे घने जंगल में, ये जानवर का बाप हिंस्र पशु का बीच में, उन्हें शौच में जाके अपना भजन कुट में भजन किया करते थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर देखे कि गुरु का पादाश्रय के लिए बा भक्ति जीवन अग्रगति के लिए मैं किससे और वह किसी प्रकार से हम उनका सेवा में आप नियोजित हो और कैसे सेवा करूं। उन्होंने जब शौच क्रिया करके अपना भजन में मग्न रहते थे, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी इतना दिव्य उन्माद में रहते, दिव्य भाव में रहते थे कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसका कोई भान नहीं रहता था। तो नरोत्तम उसी मौका का फायदा उठाए, तो हर दिन ये सोचा क्रिया जहां पर किया करते थे उसी ही जाकर और सफाई करते थे। बहुत लंबी समय तक किए उनका। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी का नजर में आ गए, उन्हें बोले ये काम कर करता है, पता लगाना पड़ेगा। तो एक दिन झाड़ में का अंदर छुप के रहे, क्योंकि इसे 3:30 बजे बा 2:30 बजे लगभग वह 4 बजे तक उन्होंने उठ के अपना शौच क्रिया समापन किया करते थे। तो एक दिन उन्हें देखे कि और कौन करता है, क्योंकि वो जो शौच क्रिया जहाँ पर मलमूत्र आदि त्याग करते थे उसी जगह को झाड़ बुहार करके बहुत बढ़िया से और लिपा पोछा भी किया करते थे। एवं अभी जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं ना हाथ में हमारे और शुद्धिकरण के लिए, बाह्य शुद्धि के लिए, लेकिन अंतर शुद्धि कैसे होगा। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावागी निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम, ये होने से होगा। वो भी नाम जब हम जब करते अपराध मुक्त होना चाहिए, अपराध युक्त होने से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ऐश्वर्य प्राप्ति है। तो हमको कोई हाथ दिखाने का जरूर नहीं, अब क्योंकि भृगु संहिता दिखाने का कोई जरूर नहीं है। ये किसका ऐश्वर्य प्राप्ति हो रहा है मतलब हमारा अपराध युक्त नाम हो रहा है, क्योंकि निरपराध नाम लैले पाए प्रेमधन। तो ये बहुत सुंदर भाव में झाड़ बुहार करके ये शौच क्रिया का निवृत्त होने के बाद हाथ को सफाई करने के लिए बहुत सारे नाइसिल पाउडर जैसे और मिट्टी रख दिया करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर से हमको कैसे गुरु का संतुष्ट करना है शिक्षा लेना चाहिए, शिक्षा को हमको अनुसरण करना चाहिए जब भी गुरु का सेवा का मौका मिले। कहा मन वाक्य से तो झाड़ी का अंदर वो छुप के देख रहे थे, ये नरोत्तम दास ठाकुर आके बहुत प्रेम से, नहीं कि उनको कोई कमांडर के बाद सीनियर डेप्यूटी उठा रहे कि तुम चलो आज बाथरूम जाना सफाई है, वो तो बोले यानी कि हमको बीमार हो रहा है जैसे मैं बता रहा था, कोई भी बहाना बना देंगे। इसका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बताते हैं कि एक कोई शिष्य था जो कोई सेवा होता था, बोलता मैं माला में हूँ, बोलता माला या थी बंगला में, बोलता मैं माला कर रहा हूँ। अच्छा प्रसाद कटा फर्स्ट नंबर में आ जाता है, क्योंकि बहुत चतुर था। एक कहावत भी है उड़िया भाषा में कि जब वो खाने का समय पहले आना चाहिए आओ, जब लड़ाई का समय बाद में आना चाहिए आ, सोने का समय ये चिटपटांग सोना चाहिए, क्यों कि जगह ज्यादा दखल होना चाहिए, दिक्कत नहीं आना चाहिए। भक्त लोग तो प्रसाद के लिए होशियार होना भी चाहिए, क्योंकि प्रसाद है सर्व दुकान। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो उसको शौच क्रिया करने के बाद जो निवृत्त हो गए लोकनाथ गोस्वामी, तो उन्होंने क्या किया बहुत बढ़िया से झाड़ बुहार करके लेपा पोछा करके और हाथ शुद्धि के लिए जो मिट्टी वो तो नाइसिल पाउडर जैसे मिट्टी को रख देके फिर चल दिए तो बाबा तो अभी झाड़ी का अंदर छुप के देख रहे ना उसका लीला, बोले कि तुमको कौन अनुमति दिया, ऐसे नहीं कि प्रेम से उनको बोले गर्म दिखा के बोले, क्योंकि गुरु का जो कर्तव्य होता है कि शिष्य को शासन करने का है, जो शासन में रहता वही शिष्य है। 3 प्रकार का शिष्य कहा जाता है कि गुरु जो सोचते हैं देखो ये प्रचार के लिए कि वह मंदिर बनाने के लिए, तो जो उत्तम कोटि का शिष्य है वो पहले से समझ जाते हैं, लेकिन मध्यम कोटि का जो शिष्य होते हैं वो चाहते हैं कि गुरु जी का व गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं करूँगा, इच्छा रहता अंदर से, लेकिन ये दैनता है उनका, जो कि तुरंत भी सुने थे ना, तरुव सोचना का प्रतिमूर्ति है। लेकिन जो कनिष्ठ स्तर का है ना, गुरु जी बोलेंगे भी सुनेंगे ना अपना से भी करेंगे, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम कौन से कैटेगरी का है, कौन से कैटेगरी का शिष्य है। लेकिन यहाँ पे नरोत्तम दास तो हाथ जुड़ के तो चुपचाप खड़ा हो गए, अभी क्या करें, दंड कांपने लगे, थर थर आने लगे, अभी क्या करेगा, अभी जा भी नहीं सकता, अभी पकड़ा गया चोर, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसी क्या करते थे ना, छुप छुप के चैतन्य महाप्रभु का प्रेम आस्वादन करने के चाहते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले से चोर को लेके पकड़ के लेके आओ, तो आज चोरी केस में नरोत्तम दास ठाकुर पकड़ा गया, तो अभी जाएंगे कहां, किसका अनुमति से आप करते हो, कब से कर रहा हो, किसके लिए कर रहा हो, इतना प्रश्न देने उत्तर देने का उसका हिम्मत कहां था, हे राजा का बेटा है। देखिए उन्हें उच्च कुल में, उच्च परिवार में, उच्च शिक्षित परिवार में भी जन्म ग्रहण किए, कोई राजा का बेटा इसे साधारण भक्त तो नहीं थे, लेकिन उनका दैन्यता कैसे देखिए, देखेगी इसी से पक्का है अभी, क्योंकि इस शास्त्र का अनुसार हम शिष्य बनने का पहले गुरु का परीक्षा करने का विधान है, और शिष्य भी गुरु को परीक्षा करने का नियम है, उसका बाद और दीक्षा, पहले शिक्षा उसका बाद दीक्षा। उनका हाँ जो अभिप्राय को जो पूछे बोले कि हम हमको दीक्षा दीजिए, लोकनाथ गोस्वामी बोले नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा किया हूँ मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि मैं तो आपसे ही दीक्षा लेके ले जाऊंगा। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी तो कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये नित्य लीला का एक मंजरी है, मंजूलाली मंजरी है, आगे ये प्रेम बन्या को प्रावन करने का काम उन कौन से भक्त का ऊपर न्यस्त करेंगे, इसे पात्र भी होना चाहिए अपना, जो हो दूरदृष्टि से देख ले कि नरोत्तम ही कर सकता है, इसी वजह से बोले कि मेरा प्रतिज्ञा में भंग कर दिया हूं तुम्हारे वजह से, जैसे भीष्म देव का रथ सत्य का रक्षा करने के भगवान अपना प्रतिज्ञा भंग कर दिए, नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने दीक्षा दी, और नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षा देने के बाद श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य इन लोग एक साथ में जीवी गोस्वामी का टोली में पढ़ाई करते थे, इसे समय आ कि सारे ग्रंथ गोस्वामी को जो प्रणाम किए उसका बाद सगड़ी गाड़ी में बैलगाड़ी में देके फिर तीन जगह को तीन लोग को प्रचार करने का विधान कर दिए। उसी समय नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ महाराज से बताए कि मैं कभी कभी आके आपसे मिल के जा सकता हूँ, तो लोकनाथ गोस्वामी ने बतलाए कि ये अंतिम दर्शन है, तो सोच लीजिए आज के गुरु का श्रीमुख से नरोत्तम दास सुन के उनका हृदय कैसे हुआ होगा, लेकिन आगे का प्रचार काम भी तो था उनका, इसलिए फिर धीरज बांध के फिर प्रचार कार्य में रहे। इससे हमको वो शिक्षा मिलता है कि हम शिष्य बनने के लिए योग्यता कैसे ना आ रहा हो, हमारे शिष्य का कर्तव्य क्या है, नहीं बाबा शिष्य जैसे हमारे पूर्णचंद प्रभु बताते कि लूभी गुरु आ रहा पापी चला दून और नक में ठेला ठेला, उसका हाँ यदि दोनों अंधा है वो जाएंगे कहाँ, गड्ढा में गिरेंगे, इसीलिए हम लोग गुरु ग्रहण किए हैं, हम तो छान के किए हैं, जान के किए हैं, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए बाप, ये प्रेम भक्ति प्रचार करने का सभी का दायित्व है, ये नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य एवं श्यामानंद प्रभु से ये शिक्षा मिलता है। तो आप जा सकते हैं गोकुलानंदर मंदिर में, लोकनाथ महाराज का समाधि है, उससे कृपा याचना कर सकते हैं कि हमको भी ऐसे दिव्य दृष्टि दीजिए और दिव्य ज्ञान दीजिए, कि ऐसे शक्ति दीजिए हम भगवत प्रेम का प्रचार कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, पृथ्वी पे आते जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मरण। लोकनाथ गोस्वामी इतना बड़े भक्त थे और भगवत गोस्वामी भी अपना जीवन ही लिखने के लिए उनका बारे में लिखने के लिए वो किशनदास कविराज को मना कर दिए थे। एक मात्र इंगित थोड़ा से दे के उन्होंने और छोड़ दिए। विशेष भाव में हमारे जो बांग्ला में और गौर पार्षद चरिता बड़ी है उसमें खूब कम है उनका लीला, लेकिन आप हिंदी में उसका संग्रह कर सकते हैं ब्रज के रसिक आचार्य, उसमें बहुत विस्तार में है। और भक्ति रत्नाकर में उसका नरहरी सरकार ने प्रणन किए हैं और महानिधि महाराज भी जो भक्त चरित्र लिखे हैं उसी में भी कुछ आपको अध्ययन करने के लिए मनन करने के लिए आपको प्राप्त होगा, उसको आप संग्रह कर सकते हैं। तो उनका जैसे धन्यता कब हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो दिव्य तीर्थ है वा लीला स्थली है उसको कम से कम हम दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो दिव्य लीला स्थली प्रकट है। कार्तिक महीना में हम जाके लोकनाथ महाराज जहाँ जहाँ भजन किए एवं खदीरवन में जो खैरा खैर है वहाँ उनका जो भजन कुटी दर्शन कर सकते हैं, उमरा गांव जो किसरी कुंड है उसको भी दर्शन कर सकते हैं। और उनका जैसे हमारा प्रेम नहीं है कि और राधा विनोद खुद राधा श्याम सुंदर अपना रूप बना करके हमको कोई विग्रह प्रदान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि हम विग्रह अपना धन से लेके व प्रेम से लेके हम उसका भाव प्रकट कर सकते हैं। और उनका तिरुभाव तिथि उत्सव पर उनका जो समाधि मंदिर एवं आज नामहर तरफ से 5 बजे एक कीर्तन हरिनाम संकीर्तन जाएगा तो उसमें भी आप योगदान कर सकते हैं। अरे इसे ही वहाँ पर भंडारा भी होता है लगभग 12:30 बजे 1:30 बजे तक, उसमें भी कोई योगदान करके लोकनाथ महाराज का कृपा प्राप्त कर सकता है। और वहाँ लगभग 100 से ज़्यादा दिन वो जीवित रहे और ये श्रावणी पूर्णिमा में और श्रावण महीना में उन्होंने ये भौतिक जगत का लीला स्मरण करके नित्य लीला में फिर मंजिर रूप का जो सेवा का हम लोग को शिक्षा प्रदान करके ये लीला के उन्होंने और स्मरण किए। तो हमारे तो इसे दिव्य वार्ता का बा उनका बखा करने का कोई इतना योग्यता नहीं है, फिर भी आप लोग का आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो सुना था मैं उसको आप लोग के पास बोलने का कोशिश किया। हरे कृष्णा, लोकनाथ महाराज की, भोगर्भ गोस्वामी की, हो प्रेमानंदे। कोई टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं, वो सारे भक्तों का जानकारी भी होगा। महाप्रसाद की प्रसाद ली जाइए।